कभी कभी किसी भागवत प्रेमी के मन में यह बात उठ सकती है कि इन बातों की इतनी आवृत्ति की क्या आवश्यकता है। कभी कभी किसी भक्त के मन में यहाँ भी ऐसा होता है कि यह स्तुति इतना व्यापक कहने की क्या जरूरत है, बढ़ा जाए आगे कुछ लीला कहिए। अब कभी कभी किसी के मन में बात आती है और कहते हैं बहुत स्तुति हुई, अब जरा आगे बढ़ा जाए। परंतु सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में इसको क्यों पेश कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? अब आगे सुनेंगे, ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो यही बात कहते हैं, नाग पत्नियां स्तुति करती हैं तो अभी यह बात जरूर कहती हैं कि आप ही जगत बनाए हैं, जगत के नियंता हैं। इस संसार में जो कुछ भी है वास्तव में सब भगवान का है। यह बात जब हम जान जाते हैं तो हमारा भोक्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है कि मैं कुछ किया हूँ, मेरा कुछ है, ये भाव समाप्त हो जाता है और यही जीव की मुक्ति है। वास्तव में जीव जल्दी नहीं स्वीकार कर सकता है कि सब कुछ भगवान का है, भले वाणी से कह दे लेकिन हृदय में जो भाव चिपका हुआ है, धसा हुआ है अनादि काल से कि मैं यह हूँ और यह मेरा है, मेरे लिए ये वस्तु है, मैं इसका भोक्ता हूँ, यह हृदय से जाना बहुत कठिन है। इसीलिए भागवत में आवृत्ति की गई है, आवृत्ति असकृत उपदेशात। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि निरंतर आवृत्ति करने से ही किसी बात का असर होता है हृदय पर। यह कथा जो नलकुबर और मणिगुरु बोल रहे हैं भगवान के लिए जरूरी नहीं है, भगवान श्रोता नहीं है, श्रोता हैं हम लोग, ये हम लोगों के लिए बात बोली जा रही है। हमें समझना है कि सब कुछ कृष्ण का है, इतना इन वस्तुओं के साथ कृष्ण का संबंध है, इतना संबंध है कि कृष्ण की ये वस्तुएं हैं ऐसा न कह करके ये कहा जाता है कि कृष्ण ही इन वस्तुओं के रूप में। यह केवल संबंध बताने के लिए बात कही जा रही है, वास्तव में भगवान कृष्ण इस विश्व से परे हैं, वे सच्चिदानंद घन हैं, यह जड़ जगत है, भगवान में और इसमें बहुत पार्थक्य है। परंतु भगवान इस विश्व के कारण है, उनके बिना इस विश्व की कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ उनका है, इसको कहने के लिए कह दिया जाता है यह विश्व भगवान है। इदम ही विश्वम भगवान वेतर, यह विश्व भगवान है, नहीं भगवान इससे भिन्न है। तो नलकुबर और मणिगुरु कह रहे हैं कि व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। ब्राह्मणा का अर्थ है जो ब्रह्म में निष्ठ है अथवा वेदों के विद्वान है, वे विदुः, वे जानते हैं कि यह सारा विश्व आपका रूप है, आपसे भिन्न नहीं है। जब भगवान इसके प्रवर्तक हैं, रचयिता हैं और उपादान कारण के रूप में भी वही हैं, उनकी ही शक्ति है। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि इस विश्व के विषय में, जीव के विषय में, सब वस्तुओं के विषय में आप पूर्ण रूप से जानते हैं और सबके नियंता भी हैं। एक श्लोक में इस बात को बता रहे हैं, आप नियंता भी हैं, कंट्रोलर भी हैं और सब कुछ जानते हैं, कहाँ कब क्या आवश्यकता है, कब कौन क्या इच्छा किया, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, भगवान को सब कुछ पता है, किस सेकंड पर कौन क्या सोचा था, क्या खाया था और आगे अनंत काल पीछे कौन क्या सोचेगा, कब छींकेगा, कब हंसेगा, कब गाएगा, रोएगा, सब भगवान को पता है। और एक एक जीव के तो भगवान की अभिज्ञता का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। कल एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि एक कोई कथाकार हैं, वो कहते हैं कि भागवत के प्रथम श्लोक पर मैं एक महीना कथा कह सकता हूं, तो उसमें है जन्माद्यस्य जतोन वयादि तर्तश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वरात अभिज्ञ। भगवान का एक गुण वर्णन किया गया है कि अभिज्ञ, अभितः जानाति इति अभिज्ञ, जो सब कुछ जाने उसको अभिज्ञ कहते हैं। अभि का अर्थ है पूर्णतः, ज्ञ का अर्थ ज्ञाता। सब कुछ जानता है। हम ऐसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसको भगवान जानते हैं सब कुछ, तो वे सब जानते हैं। तो भगवान की सर्वज्ञता का निरूपण करना यह भागवत की एक शैली। हम लोग तो कोई चीज रचते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा रचित सीमित वस्तुएं ही हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और कोई कोई सामान चोरी हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो अभिज्ञ क्या है? क्या अभिज्ञ है? अपने द्वारा रची हुई वस्तु है, रखी हुई वस्तु है, और कब चोरी जा रही है पता भी नहीं लगता। साधारण से ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं लग पाता। जहां तहां मंदिरों में भी लिखा रहता है अपने पर्स से सावधान रहिए, और फिर भी चला जाता है, अभिज्ञता कहीं नहीं है। ऐसा होता है ना, लिए साथ में पॉकेट में लिए हैं और फिर भी चला जाता है। हम क्या अभिज्ञ होंगे और चीज के लिए? किसी से पूछा जाए जब आप गर्भ में थे तो क्या क्या सोच रहे थे, थे या नहीं यही याद नहीं है तो सोचना विचारना कहाँ से याद रहेगा। ये आगे कौन शरीर मिलने वाला है, किस देश में माता पिता कौन मिलेंगे, कौन भाषा बोलनी पड़ेगी, कुछ याद है? नहीं, लेकिन रहेंगे। जापस से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से चल, मरने वाले की शरीर छोड़ने वाले का जन्म निश्चित है, वो तो भगवान जानते हैं। वेदा हम समतीतानी वर्तमान अनिचार्जुन भविष्याणी च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। वे कहते हैं मैं भूतकाल में जो कुछ हो चुका है सब जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, पर मैं उसको कोई नहीं जानता। यह भगवान की एक गुणावली है, इसको गुणानुवाद कहते हैं। त्वमेक सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वर। आप समस्त देहधारियों के, समस्त जीवों के देह असु प्राण आत्मा मन इंद्रिय आदि के ईश्वर हैं, कंट्रोलर। तो उस बात को जैसे मैं कहा कि हमसे आपने दुर्विलास कराया और नारद जी में बैठकर आपने श्राप दिया, तो इसी बात को यहाँ पुष्ट कर रहे हैं कि आप सबके इंद्रियों के, प्राणों के, मन के कंट्रोलर, नियामक, ईश्वर। तो इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, एक कीट से लेकर के ब्रह्मा जी तक, जितने भी प्राणी हैं सबके पास देह है और प्राण है, सब सांस लेते हैं, इसको प्राण कहते हैं, और सबके पास इंद्रियां हैं तथा चित मन है, तो ये सब श्री कृष्ण के नियंत्रण में। इसीलिए शरीर में भी कोई रोग हो या प्राण में या इंद्रिय में, तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ठीक कर दीजिए, क्योंकि आप ही कंट्रोलर, भगवान नियामक, उनके अधीन है वास्तव में। हमको कब तक देखने की शक्ति देंगे, कब तक चलने की शक्ति देंगे, अब तो उनकी इच्छा पर है, हमारे कर्मानुसार देते। तो सबके आप नियंता। कोई प्रश्न करे अर्थात भगवान यह कह दे कि ठीक है, ये मैं बात मानता हूँ कि मैं कंट्रोलर हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत से देवता भी हैं जो इंद्रियों पर रहते हैं, मन में रहते हैं, वे भी तो नियंता है ना। तब नलकुवर और मणिगुरु कहते हैं तुम एक, केवल आप और कोई नहीं। और कोई नहीं है, तुम एक, अकेले आप ही कंट्रोल करते हैं, आप ही उन देवताओं के रूप में बनकर कंट्रोल करते हैं, आपके अलावा कोई स्वतंत्र नियंता नहीं, तुम एक। जब कोई देवता नियामक नहीं है तो मनुष्य कैसे नियामक हो सकते हैं? देह तो सबको आदमी कहता है वो देह मेरा है, वो मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा वो है, तो देह में इंद्रियां भी हैं, मन भी है, तो इस कहने का अर्थ है कि सारा मेरा है, मैं कंट्रोलर हूँ। लेकिन नहीं, नलकुवर मणिगिरी कहते हैं कि केवल आप कंट्रोलर है। सबका देह मन इंद्रिया वास्तव में भगवान की सेवा के लिए है, भगवान बनाए हैं और बना करके नियंत्रण भी करते हैं, ये बात समझनी चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, कृष्ण ने उखल में बंधे बंधे कहा कि मैं नहीं कंट्रोल करता, मैं नहीं नियंत्रण करता, काल नियंत्रण करता है। तब कहते त्वमेव कालो भगवान विष्णु रव्य ईश्वर, आप काल हैं, त्वमेव आप ही काल है, काल और कुछ नहीं है, काल आपकी ही इच्छा शक्ति को कहा जाता है। हम मानते हैं कि काल इस जगत का निर्माता है और पालक है तथा संहार करने वाला है, लेकिन आप ही काल हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो बच्चा है, भगवान तो कहना उनको ठीक नहीं, क्योंकि इसमें तो भगवत्ता उनकी दूर हो गई है, पराधीन हो गए। तो ये कहते हैं ये काल, तो भगवान विष्णु की इच्छा को कहते हैं, तो उसी को फिर यहाँ से कहा त्वमेव कालो भगवान, आप ही समर्थ काल हैं, त्वमेव विष्णु आप ही विष्णु है, त्वमेव अव्यय ईश्वर आप ही अव्यय ईश्वर विष्णु है, आप ही काल। वास्तव में विष्णु के भी विष्णुत्व आप ही है, आप ही सब कुछ। और अव्यय, अव्यय का अर्थ अपक्षय रहित, आपके स्मृति में, ज्ञान में, आपके शासन में, पद में, किसी में भी कभी कोई व्यय नहीं होता। तो अव्यय अविनाश, इस संसार में भगवान के अलावा और जो कुछ भी पद है, देवताओं का, मनुष्यों का, तो सब व्यय होता रहता। आज शरीर में जो शक्ति है वो 10 बरस में 5 बरस में व्यय हो जाएगी। वी आय, आय का अर्थ होता है आना, और वी का अर्थ है जाना, विगत आय व्यय, जाना ही है। बुद्धि का व्यय हो जाता है, दृष्टि शक्ति का व्यय हो जाता है, पैर में चलने की शक्ति नहीं रहती, सब व्यय हो जाता है। पर बूढ़ा बन करके भी और अनेक रोग से ग्रस्त होकर के भी आदमी कहता है शिवो हम, मैं शिव हूँ। वाह रे शिव जी, शिव जी को चलने की शक्ति नहीं, शिव जी हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म तो है ही, लेकिन अभी इस दशा में पर ब्रह्म की सेवा करनी चाहिए। अर्थ मतलब अहम ब्रह्मास्मि तो ठीक है, क्योंकि जीव वास्तव में देह से परे है, तो ब्रह्म है, पर परब्रह्म का दास है। कितने लोगों के लिए पंपलेट में जहां तहां उनके शेष या दूसरे लोग लिखते रहते हैं, हमारे गुरु साक्षात भगवान है, ये भगवान है, लेकिन भगवान हॉस्पिटलाइज्ड, ऐसा भी सुना जाता। वाह रे वाह, वाह रे भगवान, वो हॉस्पिटल में भर्ती होने की लीला कर रहे हैं। भगवान, इसीलिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। वह एक ऊपर में है और बाद वाले में एव शब्द है, तो एव भी एक शब्द का ही वाचक। आप ही भगवान काल हैं, विष्णु हैं, अव्यय, तो और जो कुछ भी है सब व्यय हो जाता है। आज शान शौकत है, आज साम्राज्य है, राजा बने हैं, लेकिन कल नामो निशान मिट जाता है। भगवान तो जब से होंगे, ऐसे होना उनमें नहीं लगाया जा सकता है, वे बस हैं, हैं भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि है उस वस्तु में लगाया जाता है जिसका कुछ न कुछ भविष्य और भूत निश्चित रहता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान में अस्थि क्रिया नहीं लगाई जा सकती, अस्थि नास्ति दोनों नहीं लगाया जा सकता है। अस्थि प्राकृत वस्तु को कहते हैं जो सत्ता में है, और नास्तिक अर्थ तो जो है ही नहीं, तो नास्ति तो लगाया ही नहीं जा सकता भगवान के लिए, अस्थि शब्द भी नहीं लगाया जा सकता है। ये छठे स्कंध में हंस गुह स्तुति में बात आई, इन सब प्राकृत व्यवहार है। ऐसा हम जैसे कह दिए कि जब से भगवान होंगे, तो ये गलत वाक्य है। वास्तव हम अनादि कह सकते हैं, अनादि काल से भगवान जैसे हैं वैसे ही हैं, उतना ही सुंदर है, उतना ही ज्ञानी है, धन उतना ही है, सब कुछ है, कभी कोई भी व्यय होने वाला नहीं, उनसे दूर जाने वाला नहीं। जैसे सूरज है, कुछ काल के लिए मान लीजिए सूरज जब से है तब से उनकी गर्मी जैव की तेव बनी हुई है। कभी अभी कुछ वर्ष पहले हमने सुना था कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज की गर्मी धीरे धीरे घट रही है और यहाँ तक निकाले थे कुछ न्यूज पेपर में क्या कि भाई सूरज की गर्मी घटने वाली है तो कुछ रिप्लेस किया जाए, कुछ विचार किया जाए कि सूरज के बदले हम कैसे गर्मी दे पाएंगे दुनिया। इस तरह ही मूर्खों का विचार। और तब तक उसके दो चार वर्ष के बाद ही कहीं कहीं बहुत अधिक गर्मी पड़ गई और कहने लगे कि 50 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। ये क्या हुआ भैया, बीच में रेगुलेटर हाई कर दिया गया क्या? तो कहते थे सूरज ठंडा हो रहा है ठंडा हो रहा है, तब तक एकाएक रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी में। कभी गर्मी जाने वाली नहीं है सूरज की और शेष तेज है, बल्कि सृष्टि के अंत में सूरज की शक्ति 100 गुना बढ़ाई जाती है। 100 गुना ताप देते हैं इस जगत को जलाने के लिए और भगवान शंकरषण देव अपने 1000 फणों से उधर से आग उगलते हैं और दोनों मिल करके, और तीसरा भगवान शिव का नेत्र खुलता है, तीसरा नेत्र, ये तीन मिल करके सारे संसार को भस्म कर देते। शक्ति घटने वाले नहीं, अशेष तेज है ब्रह्म संहिता में कहा गया है सूर्य भगवान। तो भगवान है विष्णु या कृष्ण अनादि काल से अनंत ऐश्वर्य से युक्त है, जैसे हैं वैसे हैं। ये अव्यय शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका सब जो कुछ भी है सब कुछ चेंज करते हैं फ्रेश। और ईश्वर नियंता, नियंता ही हैं रहेंगे अनंत काल तक, भगवान सबके कंट्रोलर। और फिर इस बात को कहा जाए तो मानो भगवान तर्क करते हैं कि आप लोग कह रहे हो कि हम ही जगत के रूप में हैं, हम कंट्रोलर हैं, ये हैं वो हैं, तो हम जगत के रूप में कैसे हैं? हमने सुना है कि प्रकृति कारण है। तब कहते हैं तुम महान प्रकृति सूक्ष्मा रजह सत्व तमोमयी, आप ही महान है, महत्त्व है, आप ही प्रकृति हैं और सूक्ष्म दशा में प्रधान के रूप में भी आप ही हैं। और जिसके तीन विशेषण हैं रजह सत्व और तम, वो प्रकृति आप है, मतलब वो आपकी शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। इस विवक्षा से बोल रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, तो आप ही सूक्ष्म प्रकृति हैं, आप ही महत्त्व हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वमय आप ही हैं। त्वमेव पुरुष अध्यक्ष सर्व क्षेत्र विकारवित, और आप ही पुरुष हैं। भगवान ने कहा कि प्रकृति उपादान कारण है और पुरुष निमित्त कारण है इस जगत का, तो रचयिता है। तो इसी बात को फिर से वे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप ही प्रकृति हैं और आप ही पुरुष हैं। त्वमेव पुरुषो अध्यक्ष, आप ही पुरुष हैं, सर्वांतर जानी हैं और आप ही अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का अर्थ है सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी, अध्यक्ष का भी और साक्षी का भी, दोनों का एक ही अर्थ है। अक्ष शब्द है तो अधिअक्ष अध्यक्ष, स अक्ष साक्ष और साक्षी शब्द इस तरह से है। तो अक्ष का अर्थ है आंख, अक्ष शब्द ही संस्कृत में आंख कहा गया है, हिंदी में आंख कहा जाता है, आंख अक्ष शब्द। तो अक्ष से अक्षी शब्द बना है, आंख वाला, अक्ष वाला। और स अक्षी, अक्षी का अर्थ ही है आंख वाला, और साक्षी का अर्थ है कि उस दृश्य को अपने आंख से वो देखा है तो साक्षी कहेंगे उसको, स अक्ष आंख वाले के साथ उसको साक्षी कहते हैं। और अध्यक्ष का भी यही अर्थ होता है, जिसकी सब जगह आंख हो, अधिकार पूर्वक जो सबका ज्ञान रखे, कंट्रोलिंग करते हुए अधिकार रखते हुए, उसको अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष का ये अर्थ नहीं कि केवल टुक टुक देख रहा है और पावर नहीं है, अध्यक्ष का अर्थ है कि वह जरूर जहाँ उसकी दृष्टि जाती है उसका वो कंट्रोलर भी है, अधिकार पूर्वक उसकी आंखें हैं, जानकारी है उसको और कंट्रोलिंग पावर है, तो उसको अध्यक्ष का। तो आप सब कुछ जानते हैं और इसके साथ आप अध्यक्ष हैं। त्वमेव पुरुषो अध्यक्ष और सर्व क्षेत्र विकारवित, समस्त क्षेत्रों में जो विकार हो रहे हैं उसके आप ज्ञाता है। सर्व क्षेत्र का क्या अर्थ है? क्षेत्रज्ञम चापि मां विधि सर्व क्षेत्र सुभारत, और सर्व क्षेत्र का अर्थ इदम शरीरम कौन्त या क्षेत्रम इत्यभिधीयते। जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं इस जगत में, भगवान ने गीता में कहा है वे क्षेत्र कहे जाते हैं। पूरा प्रकृति क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र है, वायु जल अग्नि सब क्षेत्र है, और इन सब के मिलाप इन सब के संयोजन से जो शरीर बने हुए हैं प्राणियों के भिन्न भिन्न जलचर थलचर नभचर, वे सब भी क्षेत्र हैं। और उन क्षेत्रों में जो मन बुद्धि अहंकार फिट किए गए हैं वो सब भी क्षेत्र है इनको। और क्षेत्र में दो प्रकार के विकार होते हैं, सूक्ष्म क्षेत्र है एक स्थूल क्षेत्र है। तो सूक्ष्म क्षेत्र है मन बुद्धि अहंकार और स्थूल क्षेत्र है या शरीर, स्थूल शरीर। तो इनमें जो भी विकार होते हैं भगवान सबके ज्ञाता है। मन में बुद्धि में अहंकार में क्या विचार उठ रहे हैं, क्या तरंग उठ रही है, शोक मोह हर्ष विषाद उन सबके ज्ञाता है। और इस स्थूल शरीर में बचपन यौवन बुढ़ापा रोग फोड़ा फुंसी सर्दी गर्मी भूख प्यास जो कुछ भी है इसमें जो विकार हो रहे हैं, बुढ़ापा के शरीर क्षीण हो रहा है बढ़ रहा है, इन सब का ज्ञान उनको है। स्थूल शरीर का ज्ञान है और सूक्ष्म शरीर का सबका ज्ञान है। सर्व क्षेत्र विकारवित, सर्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्व क्षेत्र सुभारत। अब यहाँ क्षेत्र शब्द और क्षेत्रज्ञ शब्द की व्याख्या मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी बहुत काल से भगवद गीता पढ़ते आए हैं, तो केवल सूत्र रूप में इन बातों को समझ लेना चाहिए कि सभी क्षेत्रों का मैं ज्ञाता हूँ भगवान सर्वज्ञ। गृहमाणै स्तम अग्राह्य, इस पर भगवान ने एक फिर प्रश्न किया कि यदि मैं जगत का उपादान कारण हूं तो जगत की वस्तु का जब ज्ञान होता है किसी भी वस्तु का कि यह इस मात्रा का है, इतनी लंबी है, चौड़ी है, यह वस्तु हरी है, पीत वर्ण की है, लाल है, तो जब मैं ही वस्तु के रूप में हूं, मैं ही उपादान कारण के रूप में हूं, तो किसी वस्तु का ज्ञान होने से मेरा ज्ञान होना मान लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। संसार का ज्ञान है जैसे वैज्ञानिकों को है, या और भी संसार की वस्तुओं का ज्ञान होता है लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जब वस्तुओं के रूप में ही मैं हूँ तो वस्तु का ज्ञान हो जाने पर मेरा भी ज्ञान हो जाना चाहिए, मान लिया जाना चाहिए। तब कहते नहीं नहीं नहीं, आप इन वस्तुओं से बिल्कुल परे। गृह माणे स्तमग्राह्यो विकार ही प्राकृत ही गुण, जो प्राकृत विकार है गुण, यहाँ गुण शब्द से अर्थ है मन बुद्धि अहंकार आदि, या आंख कान नाक इंद्रियां। संस्कृत में और विशेष करके शास्त्रों में प्रयुक्त जो संस्कृत शब्द हैं, उनमें गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं कहीं गुण शब्द का अर्थ है देह भी किया जाता है, इंद्रियां या मन भी। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, विकार हैं, वस्तुएं हैं, वास्तव में ये गृह है, गृह मार है, इनका ज्ञान आत्मा रखता है, आत्मा का ज्ञान ये नहीं रखती है। जैसे हमारे सामने यह पुस्तक है, तो पुस्तक यह गृह है, इसको ग्रहण कर रही है हमारी आंख, लेकिन हमारी आंख का ज्ञान इस पुस्तक को नहीं हो सकता है। कोई पूछे इस पुस्तक से कि जो पढ़ रहा है उसके आंख का ज्ञान तुमको है, जैसे मैं आंख बंद करूं तो पुस्तक हमारे आंख को नहीं देखेगी, हमारी आंख इसको देख रही है। इसी तरह भगवान वास्तव में ग्राहक हैं, विगृह नहीं है, प्राकृत नेत्रों से, प्राकृत बुद्धि से, यहाँ तक कि अप्राकृत बुद्धि से, अप्राकृत नेत्र से भी भगवान को ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो गृह्यमान वस्तु है या इस संसार में थोड़े काल के लिए जो ग्राहक है, किसी वस्तु को समझने वाली है, वास्तव में भगवान ही उसमें शक्ति दे करके दिखा रहे, ग्रहण कर रहे हैं। तो प्राकृत वस्तु है, अप्राकृत वस्तु है, भगवान अप्राकृत प्राकृत वस्तु सभी के नियंता है, प्रवर्तक, तो ये ग्रहण नहीं होते हैं। कोई प्राकृत वस्तु ग्रहण करके ऐसा ना समझे कि मैं भगवान को ग्रहण कर लिया, भगवान का मुझे ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। तो गृह मानिस तमोग्राह्यो, तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ जाती है कि मन, बुद्धि, अहंकार या आंख, कान, स्वगिंद्रिय आदि, ये भगवान को नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन आत्मा तो भगवान को जान सकता है। आत्मा तो चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, अतः वह भगवान को ग्रहण कर सकता है। तो इस पर ये भगवान ने मानो कहा कि जीव तो मुझको जान सकता है, तब नलकुवर मणिगुरु कहते हैं कौन है इस जगत में जो आपको जान सकता है, को निहार अति विज्ञातुम प्राक सिद्धम गुण समृत। इस जगत में जो भी जीव है गुण समृत है, देह द्वारा ढका हुआ है समृत, या मन बुद्धि अहंकार द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिए गए पदार्थों से जीव का ज्ञान ढका हुआ है, तो ऐसा गुण समृत कौन व्यक्ति है जो प्राक सिद्धम विज्ञातुम अर्हति। आप तो प्राक सिद्ध हैं, पहले से ही हैं, पहले से ही हैं, इसका क्या अर्थ है, इस प्राकृत विश्व की रचना से आप पहले के हैं, ऐसा नहीं कि हमारे जन्म से ही भगवान पहले के हैं, जन्म से तो पहले के हैं ही, लेकिन प्रकृति में कोई भी पदार्थ नहीं था, न आकाश था, न हवा थी, न आग था, कुछ नहीं था, उसके पहले ही भगवान थे। तो भगवान को यहाँ प्राक सिद्धम कहा गया है, प्राक सिद्ध, जो पहले से ही है, सिद्ध का अर्थ है सत्ता विशिष्ट, जो वस्तु पहले से पूर्व से ही है उसको प्राक सिद्ध कहते हैं। प्रकृति से पहले अर्थात प्रकृति के द्वारा बनाए हुए इस जगत के सृष्टि कार्य से भगवान पहले के हैं, बाद में सबका वर्ण जन्म हुआ, वस्तुएं बनी, और उस पर भी जीव गुण समृत है, प्राकृत पदार्थ में फंसा हुआ है, देह में अहम बुद्धि किया है, प्राकृत बुद्धि मिली है, प्राकृत मन मिला है, सब कवर है, गुण का आवरण है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे आपको जान सकता है। प्रकृति का आवरण और भगवान बहुत पहले के हैं, चिन्मय है, तो नहीं जान सकता है। कह विज्ञातुम अर्हति, कौन है जो यहाँ जानने का। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी जन्म लिए, तो ब्रह्मा जी तक भगवान को नहीं जानते थे, उनके मन में जिज्ञासा हो रही थी कि यह कमल का पुष्प कहीं से जन्म लिया है, कोई कारण है इसका, मुझको कोई जन्म देने वाले हैं, लेकिन वो कौन है ब्रह्मा जी को इसका पता नहीं था। अपने बुद्धि से, अपने प्रयास से उन्होंने अन्वेषण करने का उद्यम किया, कमल नाल में प्रवेश करके गए नीचे और सोचे कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वही हमारे कारण होंगे, तो भगवान के नाभि तक नहीं पहुंच पाए। कमल नाल में जाने में, उनको नीचे उतरने में कई करोड़ वर्ष लग गया। अब बताइए इतनी इतनी इतना लंबा वो स्टेम है, कमल का नाल है, कि ब्रह्मा जी जाते जाते पा नहीं पाए। एक लड़का कहा कि सांस उब गई होगी, सांस फूलने लगी होगी, इसलिए भाग आए होंगे। ऐसा जो कुछ भी हो, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि तक नहीं पहुंचे, निराश हो गए, निराश होकर के फिर कमल के पुष्प पर आकर बैठ गए। तो वहां बैठ गए, निराश से चिंतन कर रहे थे भगवान का, अपने कारण का, तो उसी समय तप तप दो शब्द सुनाई पड़े, तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी भगवान का संकेत समझ गए, उन्होंने अपने इंद्रियों को समाहित करके भगवान का ध्यान किया, तप किया, तो भगवान इनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर के तब अपना समस्त ज्ञान प्रदान किए। तो जब इस जगत में ब्रह्मा जी की ये दशा है, उन्हें अपने कारण भगवान का ज्ञान स्वतः नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति दूसरा होगा जो ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ का श्रेष्ठ का श्रेष्ठ का श्रेष्ठ का करोड़ों पीढ़ी नीचे जन्म ले रहा है, वो कैसे जान जाएगा भगवान को। और यह पूछा जाए कि आप बताइए आपकी दृष्टि में कृष्ण, तो क्या बताएगा भगवान को, क्या समझेगा। और ब्रह्मा जी के जब पुत्रों ने जन्म लिया तो सभी भगवान के विषय में जिज्ञासु थे, परंतु ब्रह्मा जी की शरण लेने से वे सब ज्ञानी हुए। जैसे नारद जी, सबको ब्रह्मा जी ने शिक्षा दिया, फिर नारद जी ज्ञान बांटते हैं। इस प्रकार से परंपराएं चलती हैं, जैसा प्रसिद्ध चार वैष्णव परंपरा है। तो भगवान का ज्ञान परंपरा में इस तरह आता है, लेकिन कोई व्यक्ति परंपरा में न हो, ऐसे चुपचाप बैठा रहे और कहे कि हम भगवान को जान जाएंगे, कैसे जानेगा। को नु यह अरहति विज्ञातु, कौन ऐसा है जो जानने में समर्थ है आपको, गुणों के पराधीन जीव कैसे जान सकता है। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। आप ऐसे अविज्ञ हैं, अतः हम आपको जानने का साहस नहीं कर सकते हैं, हम तो केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तस्मै तुभ्यं भगवते नमः, ऐसे अविज्ञेय स्वरूप परमात्मा को, ब्रह्म को हम प्रणाम कर रहे हैं। हे छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, और कभी आप वसुदेव जी के भी पुत्र रहे हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। वेद से इस जगत के विधाता निर्माता संचालक, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान चकित है, कहते हैं क्यों हमको ये मिथ्या विशेषण दे रहे हैं, मैं कहां ब्रह्म हूं और परमात्मा हूं, ये हूं वेधा हूं। तो कहते आत्मद्योत गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः, आप अपने द्वारा प्रकाशित गुणों द्वारा ही अपने को ढके हुए हैं। यहाँ गुण के अर्थ दो हुए, यहाँ गुण का अर्थ है भगवान बाल लीला प्रकट किए हैं, तो अपने बाल लीला के आवरण में अपनी महिमा को, अपने ऐश्वर्य को छन्न कर लिए। अपने द्वारा प्रकाशित बाल क्रीड़ा के द्वारा आप अपने ऐश्वर्य को छन्न कर लिए, आवृत कर लिए। वास्तव में आप ब्रह्म हैं, आपका कोई और छोर नहीं है, कौन है जो आपके कमर में रस्सी बांध सकता है, लेकिन आप अपने ऐश्वर्य को स्वयं ही ढके हुए। आप वासुदेव हैं। इस श्लोक के द्वारा वास्तव में नलकूबर और मणिग्रीव भगवान को याद दिलाना चाहते हैं देवताओं का कार्य करने के लिए। उनके मन में यह बात है कि हम लोग देवता हैं और देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं मथुरा में। एक आचार्य टीका करते हुए कहते हैं कि ये याद दिला रहे हैं कि आप ऐसे ही केवल उखल मत घसीटिए, मथुरा जा करके और असुरों का भी वध कीजिए। बेचारे देवता बड़े दुखी वासुदेवाय ते नमः, आगे भी ये कहेंगे दो बार। तो भगवान ने कहते हैं कि जब इस प्रकार से मैं अविज्ञ हूं, कोई मुझे नहीं जान सकता है, तो आप लोग कैसे जान गए, आप लोगों को कैसे ज्ञान हो गया कि मैं भगवान हूं, मैं परमेश्वर हूं। तो कहते हैं हम लोगों को ही नहीं, किसी को भी ज्ञान हो जाएगा आपका कि आप भगवान हैं। जस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैर तुल्यातिशय वीर्यै देहि स्वसंगतैः। जब आप शरीरधारियों में अपना शरीर प्रकट करते हैं, यद्यपि आप अशरीरी हैं, प्राकृत देह से रहित है आप, फिर भी आप अप्राकृत अपना चिदघन स्वरूप प्रकट करते हैं इस जगत में अशरीरी। जब आप अवतार लेते हैं, अपना चिन्मय श्री विग्रह इस जगत में प्रकट करते हैं, चाहे आकार कुछ भी हो, जैसे वामन देव या भगवान नृसिंह देव या स्वयं आप बालक के रूप में कभी भी, तो तब अवतारा ज्ञायन्ते, जैसे अवतारा ज्ञायन्ते, आपके अवतार का पता चल जाता है कि आप हैं, ये पता चल जाता है कि ये भगवान है। कैसे पता चलता है? वीर जय, आपके पराक्रमों से, आपकी अद्भुत लीलाओं से पता लग जाता है कि ये भगवान है। कैसे? वीर अतुल्य और अतिशय देहिसु असंगत, आप ऐसे ऐसे पराक्रम करते हैं जिसकी कहीं तुलना नहीं है, कोई उसके समान कर ही नहीं पाता है। जब भी आप अवतार लेते हैं और ऐसी लीला करते हैं कि दूसरा जीव कर नहीं सकता, निश्चित है कि आप ही कर पाते हैं। ये अतुल्य वीर्य और अतिशय वीर्य, अतिशय का अर्थ है सबसे बढ़ करके, और अतुल्य का अर्थ है समान नहीं, असम। सबसे विलक्षण लीला आप करते हैं, जैसे 12 अवतार आपने धारण किया तो अपने दांतों के अग्रभाग पर पूरा भूमंडल उठा करके आराम से हंसते हुए आ रहे भगवान, तो क्या पता नहीं चल गया ब्रह्मा जी को और मरीचि आदि ऋषियों को कि ये भगवान। ब्रह्मा जी को छींक आई थी एक, वो चिंता में पड़े थे, छींक से भगवान बराह देव उत्पन्न हुए, लेकिन क्षण भर में ही इतना बढ़ गए, विशाल पर्वत के समान गरजने लगे, समुद्र में कूदे, ब्रह्मा जी तत्काल समझ गए कि ये भगवान। तो जस्य अवतारा ज्ञायन्ते, आपके अवतार का पता चल जाता है, समस्त शरीरधारियों से विलक्षण पराक्रम करते हैं, लीला करते हैं, और पृथ्वी का पता लगा करके, पृथ्वी को टांग करके अपने दांतों के अग्र भाग पर लाए। बसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिन कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश। बसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना, तव दसन शिखरे लग्ना धरणी बसति, कथम भूता शशिन कलंक कलेव निमग्ना। जैसे शशिनी, शशि में कलंक कला दिखती है छोटी सी, वैसे आपके श्वेत बड़े बड़े दांतों पर यह पृथ्वी एक काला धब्बा जैसा दिखाई पड़ती है। संपूर्ण भूमंडल भगवान वराह देव के दांतों के आगे कुछ भी नहीं था। एक तो उनके बड़े बड़े दांत और दांतों से कई गुने बड़ा उनका देह था निशान, तो संपूर्ण भूमंडल तो शशि में कलंक कला की तरह भगवान के दर्शन शिखर के अग्र भाग में दिख रहा था। तो कितने बड़े वराह देव, क्या पता नहीं लग गया कि ये भगवान है, इतना बड़ा कोई देहधारी हो ही नहीं सकता, ऐसा पराक्रम नहीं कर सकता। और अभी अभी आप हैं बच्चा, लेकिन आपने अपने कमर में बंधी हुई रस्सी को खींचा तो ये दोनों वृक्ष उखड़ गए मूल से, जबकि हजारों हजारों गजेंद्र भी मिलकर इनको नहीं उखाड़ सकते थे। तो क्या पता नहीं लग जाता है कि आप भगवान हैं? क्या कोई ऐसा बच्चा करेगा? क्या कोई बच्चा ऐसा वृक्ष उखाड़ेगा? छोटा पौधा भी नहीं उखाड़ सकता, क्या इतना भारी भारी वृक्ष उखाड़ेगा? तो पता चल जाता है। देहिसु असंगत, अन्य शरीरधारियों में ये सब आपके पराक्रम असंगत है, अघट मान, दूसरे में संभव नहीं है। दूसरा जीव क्या ये सब पराक्रम करेगा? बेचारा भूख से युद्ध कर रहा है, प्यास से युद्ध कर रहा है, नींद से युद्ध कर रहा है, पराक्रम क्या करेगा? बहुत बड़े बड़े लोग हुए लेकिन उनकी कार्यावली सीमित रही। भगवान जो कुछ करते हैं अनंत करते हैं, आवश्यकता पड़ गई तो मंदराचल को धारण कर लिया, पहाड़ उठाने की भगवान को आदत है। यहाँ इस ब्रज में गोवर्धन उठा लिए, लेकिन ब्रज में जो भगवान लीला करते हैं उसकी एक अद्भुत विलक्षणता है। हमारे आचार्यों ने कहा है वे अपने मधुर रूप से ही सब कुछ करते हैं। मंदराचल धारण करना हुआ तो कच्छप रूप से हो गए, ऐसा नहीं कि अपने कपार पर चतुर्भुज भगवान टांग लें या हाथ पर टांग लें, ऐसा नहीं किए। उसके लिए कच्छपावतार ग्रहण किए, बहुत विशाल पीठ वाले, उस पर मंदराचल चलाया जा रहा था बहुत वेग से। उस मंदराचल पर्वत के विषय में कहा गया है कि उसके पेंदी में बहुत विशाल विशाल चट्टाने थी, नुकीली सोने की, बहुत ज्यादा उभर खाभर था। और वैसे पर्वत को भगवान के पीठ पर रगड़ा जा रहा था जोर से। पीठ पर रगड़ना उद्देश्य नहीं था, वो चतुर्दिक फैले हुए दूध को मथना था उसके आंदोलन से, परंतु रगड़ तो भगवान के पीठ पर हो रही थी। और जब दूध मथा जा रहा था तो उसमें इतने बड़े बड़े तरंगे उठ रही थी, भंवर बन रहे थे, उससे बड़े बड़े कच्छप और तिमिंगल दूर भाग जाते थे। उस दूध के झोंका से इतने जोर से चल रहा, परंतु उस विशाल पर्वत की रगड़ का अनुभव भगवान को कैसा हुआ, बारंबार भागवत में कहा गया है कि ऐसा लगा जैसे भगवान के पीठ को कोई खुजला रहा है और भगवान को सुख की नींद आ गई, सो गए। ऐसा भागवत में वर्णन किया गया, इसको भगवान कहते हैं। इतना विशाल पर्वत रगड़ा जा रहा है और नुकीली चट्टाने लग रही खरर खरर पीठ में, लेकिन वो बहुत सुख की नींद आ गई। भागवत शेष करते हुए सुध गोस्वामी इस श्लोक को बोले हैं, भगवान कच्छप देव सो रहे हैं और सोने पर उनके श्वास वायु से समुद्र आंदोलित होता है, तो कहते श्वासा नीलाह पांतु कमठा करते भगवत श्वासा नीलाह पांतु, कमठा कृति भगवान की श्वास वायु हमारी रक्षा करे, इस तरह से प्रार्थना की जाती, तो भगवान का पता चल जाता है। इसलिए आज भी भगवान का पता लगाना हो तो ये कह दिया जाएगा इसमें कोई भगवान नहीं है, क्योंकि जो भी पराकर्म है वो सब देहिसु संगत है, ऐसा सामान्य कर सकते हैं। कोई विलक्षण काम करे तब तो कहना चाहिए कि भगवान हो गए। जैसे मान लीजिए कहीं बांध बनाना है तो कोई एक आदमी कई पहाड़ टांग करके ला करके बांध बना दे तो मान लिया जाएगा कि भगवान है। जैसे भगवान ने पुल बनाया, सेतु बनाया समुद्र पर, तो पर्वत ला ला करके पत्थर ला ला करके पानी में डाले गए और सब उतरते थे, डूबते नहीं तैरते थे। क्या कोई है ऐसा इंजीनियर इस समय जो हाथ से छू दे पत्थर और बस तैर जाए? कोई नहीं है, कहीं कोई पिलर नहीं था उसमें। और जानते हैं कितना चौड़ा और रोड था, बताते हैं कि 10 योजन वह चौड़ा था, एक योजन 4 कोस का होता है, 8 माइल का होता है, तो 80 माइल वो चौड़ा था और 100 योजन लंबा था, 800 माइल लंबा पुल, इतना बड़ा पुल बनाया गया था समुद्र पार करने के लिए। तो ऐसा नहीं था कि किरान और क्रेन लाया गया हो, ये किया गया हो, क्या कुछ नहीं, पत्थर लाए बानर सब टांग टांग करके, और एक पर राव एक पर मल लिखते थे, नील और नल, वो शिल्पी थे। पत्थर पहले बिखर जाते थे, तैरते थे समुद्र के तरंगों से, तो तैरते थे लेकिन इधर उधर हो जाते थे, लेकिन जब राय और मल लिखा जाता था तो मसाला की तरह सट जाते थे। और भगवान के प्रताप से पत्थर तैर गए, श्री रघुवीर प्रताप से पत्थर जलयान हो गए, काठ का काम कर रहे थे, दूसरों को तारने वाले हो गए, जबकि दूसरों को डुबाना होता है तो पत्थर बांध कर डुबाते हैं, जो दूसरों को डुबाने वाले हैं तो कोई नहीं डूबता है तो उसको पत्थर बांध कर डुबाते हैं, वे पत्थर तैरने लगे, इसको भगवान कहा जाता है। देहधारियों में पता चल जाता है कि यह व्यक्ति भगवान है कि क्या है, उसके वीर्य से, उसके पराक्रम से, जो कि अन्य शरीरधारियों में संगत नहीं है, असंगत। तो ऐसे प्रभु आप सब लोक के भाव के लिए और विभव के लिए इस समय प्रकट हुए सांप्रतम। स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंश भागे न सांप्रतम पतिराशिषान। वही आप, वही प्रभु, वही परब्रह्म परमात्मा आप सर्वलोकस्य भवाय विभवाय, समस्त लोकों के उद्भव के लिए, विकास के लिए और विभव के लिए, विभव का अर्थ है विगत भव जस्मत विभव मोक्ष के लिए, सबको मुक्त करने के लिए अर्थात अपनी लीला प्रकाशित करके मुक्ति का पथ दिखाने के लिए, भक्ति कराने के लिए आप अवतार लिए हैं। इस समय सांप्रतम वास्तव में आप समस्त वस्तुओं के स्वामी हैं, समस्त भोगों के दाता हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके आप पति हैं। आशीषम, आशी कहते हैं जीव के भीतर जो भी इच्छा होती है उसको आशी कहते हैं, जैसे आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ होता है कि आपकी इच्छा पूरी हो, सो आशीर्वाद। तो आशीषम पति श्री कृष्ण समस्त आशीषम पति श्री कृष्ण समस्त आशीषों के पति हैं, सब दाता है। इस संसार में भी जिसको पैसा चाहिए भगवान उसको दे सकते हैं, और इतना दे सकते हैं कि उतना कोई नहीं दे सकता। आज तक शिव जी के भी भक्त इस संसार में हुए हैं बहुत, ब्रह्मा जी के भी हुए जैसे हिरण्यकश्यप, दुर्गा जी के भी भक्त बहुत हुए जैसे कंस, इन भगवान के भक्त हुए और भगवान ने उनको धन दिया जैसे ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज को जो धन दिया गया है वो रावण आदि को तो उसका करोड़वां अंश भी नहीं, उसकी कोई कल्पना भी नहीं। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिला हुआ है, वैकुंठ है वह, उसका प्रलय में नाश नहीं होता है। इतना अपार भगवान धन देते हैं या और भी अपने भक्तों को दिए, दूसरे लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि समस्त वस्तुओं के धन के मुक्ति के भोगों के सबके ईश्वर भगवान आप हैं। तो अवतीर्णो अंश भागे न, अपने अंशों के द्वारा, अपने भाई बलराम जी के द्वारा चाहे अपने अन्य समस्त अंशों के द्वारा साथ आप प्रकट हुए हैं। अथवा जीव गोस्वामी पाद जी एक अर्थ करते हैं अंश भागे न, भाग का अर्थ भाग्य भी होता है, अपने अंश जीवों के भाग्य से आप इस समय प्रकट हुए, अपने अंश के जीवों के भाग्य से आप प्रकट हुए हैं। ये सौभाग्य है जीवों का कि आप इस समय प्रकट हुए हैं, सांप्रतम हम पहचान रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के मन में कोई अभिलाषा है, कोई चाह है, तो उसे भगवान से कहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में समस्त वस्तुओं के दाता कृष्ण है, तो उनकी गलती है जो लोग दूसरे से मांगा करते हैं। हम कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता, कोई भी देवती देवी देवता या मनुष्य इच्छा पूरी नहीं कर सकता जीव की, भगवान इच्छा पूरा कर देते। तो आशीषों के पति हैं, अतः उन्हें वे प्रणाम कर रहे हैं, नमः परम कल्याण, नमस्ते विश्व मंगल, पाठ भेद भी है, नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय जदूनाम पतये नमः। हे परम कल्याण हम आपको नमस्कार करते हैं, हे परम मंगल हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान से कल्याण तो होता ही है जीवों का, वास्तव में कल्याण साक्षात भगवान है, भगवान ही कल्याण, कल्याण का अर्थ होता है सुख। हे सुख घन मूर्ते, हे साक्षात सुख आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, तो आप ही सुख हैं। भगवान से सुख की अपेक्षा क्या की जाएगी, भगवान प्राप्त हो जाएंगे सबसे बड़ा आनंद, परमानंद प्राप्त हो जाएगा। तो यह तो निष्काम भक्तों के लिए है कि आप ही परम कल्याण हैं, आप ही परम सुख हैं, आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कहने का भाव ये है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको ठीक है, भगवान तो चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए, उन्हें भगवान का प्रेम चाहिए, लेकिन इस जीवन में भी कुछ सुख से खाने पीने के लिए, रहने के लिए घर द्वार चाहिए और सब चाहिए, तो कहते हैं नमस्ते परम मंगल, चाहे नमः परम मंगल, भगवान ही परम मंगल। मंगल का यह अर्थ हुआ कि आपका भजन करने पर, आपकी शरण में आने पर सब तरह से मंगल होता है। मंगल का अर्थ है यात्रा भी ठीक से चलना और डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाना ठीक से। कल्याण का अर्थ है डेस्टिनेशन, और मंगल का अर्थ है डेस्टिनेशन और यात्रा पथ दोनों। सुख से जिंदगी पार होती है आपकी कृपा से। वास्तव में भले कोई कह दे कि हम निष्काम भक्त हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन इस जीवन में बहुत बहुत जरूरत पड़ती है सभी जीवों को, खासकर परिवार वाले आदमी को। उसको जरूरत पड़ती है कि हमारे घर में पैसा रहे, शरीर निरोग रहे, स्वजनों में प्रेम रहे, इसके साथ ही साथ हमारे स्वजन पढ़े लिखे, और यह भी है कि उनकी मति धर्म में भगवान में लगी रहे, और इस तरह से सुख से जिए और जी करके अंत में भगवान के धाम में जाए, तो इसको मंगल कहा जाता है। गति के अर्थ में मंगल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नमः परम मंगल का अर्थ है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही जीव इस जगत में, इस जीवन में भी सुखी रहता है, कोई चिंता नहीं होती है, और अंत में आपका चरण कमल प्राप्त करता है। हे परम कल्याण, आपको नमस्कार है। हे परम मंगल, आपको नमस्कार है। तो मंगल चाहिए तो कृष्ण का भजन करना चाहिए, कल्याण चाहिए आत्यंतिक सुख तो कृष्ण का भजन करना चाहिए। वासुदेवाय शांताय जदूनाम पते नमः। हे वसुदेव जी के पुत्र, आपको नमस्कार है। और जो नटखटपना आप कर रहे थे बहुत ज्यादा, इस समय तो शांताय, शांत हो गए हैं बांधने पर। यह शांत का यही अर्थ है, शांताय। शांताय का अर्थ थोड़ा बोलिए, आप बिल्कुल चुप है। वो सुनना चाहते थे, वास्तव में वचनामृत का पान करना चाहते थे नलकुवर मणिग्रीव की। हम बोल रहे हैं, भगवान भी कुछ बोले। तो इसी पे कहते हैं शांत आय, आप बिल्कुल शांत हैं। जदूनाम पतये नमः, हे जादवों के पालक आपको नमस्कार है। तो जादव सब तो देवता बने हुए, देवता ही जादवों के रूप में जन्म लिए हैं, तो संकेत कर रहे हैं कि ऐसे ही बालक लीला करते रहिएगा ब्रज में, कि पृथ्वी का भार भी हरिएगा, देवताओं का काम भी कीजिएगा। कुछ भी तो नल कुबर को अपनी जाति से ममता है, देवताओं से, कि हमारा दुख है। ऐसे व्यक्तिगत तो इनका तो दूर है, लेकिन समग्र जाति का, समस्त देवताओं का दुख आपको अब दूर करेंगे। फिर जादवों के पालक कह रहे हैं, अथवा वृष्णि वंशी भी जादव ही है, इसलिए कह रहे हैं जदूनाम पतये नमः। हे वसुदेव जी के पुत्र, हे शांत और हे जादवों के पालक, आपको नमस्कार। शांताय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ और दूसरा अर्थ नहीं किया जाएगा। वैसे तो भगवान विष्णु का स्वरूप है कि वे राग द्वेष आदि से रहित है, शांत है। भगवान बड़े वास्तव में सुंदर है, वे तीक्ष्ण नहीं है, विकट नहीं, शांत। और दूसरे देवता तो प्रणाम नहीं करने पर जान मार देंगे, वैसे हैं। लेकिन भगवान तो छाती में लात मारने पर भी शांत आए, वो क्रोध नहीं करते। यही तो भगवान की भगवत्ता है, शांत है। परंतु यहाँ पर वास्तव में वे शांत है। वो सिद्ध पुरुष स्तुति कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं। जब नमः कहते थे तो लोग चरण छू छू कर कहते, और शांत चुपचाप बैठे थे भगवान। तो शांत है जदूनाम पतये नमः। जब इस तरह से प्रणाम कर रहे थे, तब नलकुबर मणिग्रीव ने यह अनुभव किया कि अब ब्रज में इनकी बाल लीला में हम लोग व्यवधान बन रहे हैं। गोपों के समाज में इतना तेजस्वी देवता तो रह ही नहीं सकते थे, और ये रहते तो और आगे की लीला भगवान नहीं कर सकते थे। थोड़े देर के लिए भगवान की अचिंत शक्ति से माँ यशोदा उधर काम में लग गई थी, उसको कुछ भी पता नहीं चला कि दो देवता प्रकट हुए थे और कृष्ण की स्तुति पूजा करके वे चले गए स्वर्ग, कुछ पता नहीं लगा उसको। तो लोग स्वयं ही कहते हैं, अनुजानी ही नव भूमंस तवा नुचर किं करो। हे भूमन, हे सब तरह से परिपूर्ण, उस समय की बात इनको याद आ रही है जब रस्सी में बंध नहीं रहे थे भगवान, दो अंगुल कम हो रहे थे, तो इसके लिए भूमा शब्द दे रहे हैं, परिपूर्ण अखंड ब्रह्म अपरिच्छिन्न। तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म को आज रस्सी से बांधा गया है, तो आपकी अद्भुत लीला है। तो हे भूमन, आप सब तरह से परिपूर्ण है, परंतु हमें आज्ञा दीजिए, हमें अनुज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, हम आपके अनुचर के किंकर हैं। हम में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन हम आपके दास के दास हैं, अर्थात भगवान शिव के हम लोग किंकर हैं, या नारद मुनि के किंकर हैं, या आपके भक्त कुबेर जी के पुत्र हैं। तीनों अर्थ यहाँ लिखा गया, अनुचर किंकर, हम आपके अनुचरों के किंकर हैं, दास दासों के दास हैं। तो हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। और जब उन्हें ऐसा लगा कि भगवान चुपचाप हैं, तो ये अनुभव की शायद भगवान कहते हैं कि जल्दी हटो यहाँ से, हमको और लीला करनी है ना, नहीं बोलना है, बहुत भारी बोली के समान होता है वास्तव में। आप किसी से बार बार बोलिए कही और व्यक्ति गंभीर चुपचाप बैठा हो, तो मन में होगा कि इसको पसंद नहीं है हमारी अवस्थिति यहाँ। तो इसीलिए कहते अनुजानी, अनुजानी ही का अर्थ है कि जब आज्ञा दीजिए गंतुम इति से, अब हमें जाने के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले भगवान से बात करना चाहते हैं, ये तो जान गए हैं कि भगवान चाहते हैं कि ये जाए, नहीं तो हंसते बोलते। तो हम आपके अनुचर के किंकर हैं, आपका दर्शन आपके भक्त ऋषि की कृपा से हमें हुआ, बहुत अच्छा किया कि नारद जी के द्वारा आपने हमारा ऐश्वर्य भ्रंश किया, हमें वृक्ष शरीर मिला, आपका अनुग्रह मिला, आपका संग मिला, जब भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे थे, इन लोगों ने निश्चय कर लिया कि अभी चाहते हैं कि जाएं। तो जो भगवान की आज्ञा हो, इच्छा हो, उसी का पालन करना चाहिए। तब कहते हैं वाणी गुणानु कथने श्रवण कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। कहने का भाव यह था कि हे प्रभु, अब तो हम जाएंगे उसी स्थान पर जहाँ से हम वृक्ष बनाए गए थे, फिर हम अलकापुरी जा रहे हैं, आपकी यही इच्छा है हम समझ रहे हैं। इतना सुंदर देह दिए, मत शरीर दिए, उद्धार किए, और आपका यह आशा है कि हम जाएं उसी स्थान पर, अलकापुरी में उसी पद पर रहें, वैसे रहें। तो हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी वाणी आपके गुणानुवाद में लगी रहे, वहां हम और कोई बात दूसरी न बोले, कभी भी योग जाग ज्ञान आदि का निरूपण हमारी जीभ न करे, केवल आपके गुणों का वर्णन करो। वाणी गुणानुकथन है और श्रवण कथायाम, हमारे दोनों कान कथा में लगे रहे। दोनों कान कहने का मतलब है कि सुनना हमारा पूर्ण रूप से आपकी कथा में रहे, और कोई बात ना सुने। तो एक वचन ना को अगर श्रवण दो वचन में कह रहे, इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कानों की संपूर्ण वृत्ति केवल कथा श्रवण में लगे, इसके लिए श्रवण। हस्तौच कर्मसु, और हमारे दोनों हाथ आपकी सेवा में रहे, आपके काम में रहे, और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रहे, आपके सुंदर रूप के स्मरण में, गुण में। और सिरस तव प्रणामे, हमारा सिर आपको प्रणाम करने में लगा रहे। आप कैसे हैं? निवास जगत, जगत ही आपका निवास है, आप जगत में हैं। तो जगत को प्रणाम कर दिया जाए तो भगवान को प्रणाम हो जाएगा, ये भाव नहीं है। आप जगत में निवास करते हैं, लेकिन हमारा सिर आपको प्रणाम करे। अथवा निवास जगत का अर्थ है जगत जस निवास, वहां जगत का अर्थ है ब्रज, ब्रज आपका निवास है। तो ऐसे ब्रज को प्रणाम करने में हमारा सिर लगा रहा, तो निवास ब्रज सहित आपको प्रणाम करे। ब्रजरज में ब्रजरज हमें मिलता रहे, या हम वहीं से प्रणाम करें, जैसे भी हो आपको प्रणाम करें, आपके धाम को प्रणाम करें, हमारा सिर लगा रहे। दृष्टि सताम दर्शनस्थ भवत तनुना, और हमारी दृष्टि, हमारे आंख की शक्ति सताम दर्शने अस्तु, आपके भक्तों के दर्शन में लगी रहे, जो आपके शरीर माने गए हैं। वास्तव में भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए भक्तों को, साधुओं को कृष्ण तनु कहा गया, वे कृष्ण के शरीर, कृष्ण उनके हृदय में बसते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भवत तनु नाम, अथवा जो आपके श्री विग्रह हैं मंदिर में स्थापित, उन श्री विग्रहों का हम हमेशा दर्शन करते रहे, हमारी दृष्टि लगी रहे दर्शन करने में। इसमें कई मांग किए हैं, 7 मांग किए हैं। सख्य और आत्म निवेदन अपने आप आते हैं, अंतर्भूत है इसमें। इस प्रकार से 7 प्रकार की भक्ति की याचना कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि ये नलकुबर और मणिग्रीव क्यों चले गए ब्रज से अलकापुरी में, इनको यहीं रहना चाहिए था। लेकिन वास्तव में भगवान चाहते हैं कि भगवान की इन लीलाओं का, भगवत तत्व का प्रचार सारे जगत में हो, देवताओं के समाज में, असुरों के समाज में, मनुष्य के समाज में। नलकुबर और मणिग्रीव स्वर्ग में जाकर इस लीला को कहेंगे तो भगवान की महिमा का ज्ञान होगा लोगों को, कृष्ण से जुड़ेंगे तो उनका दुख मिटेगा। यहाँ पर उनके भावों को भक्ति रसायनम में इस प्रकार कहा जा रहा है। जब नलकुबर और मणिग्रीव जाने के लिए तैयार हुए स्वर्ग, तो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके चरणों में कुछ मांग रहे हैं। यद्यपि आप बाह्य रूप से तो स्वयं ही लाचार हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन आप भूमा पुरुष हैं, आप पूर्ण हैं। आपसे हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि और जो मांगने लायक चीजें होती हैं वो सब हमको आपने पहले से दिया। क्या क्या दिया है उसको हरिश्वर जी कहते हैं। जत्तात राज राजो धनम पिनिधयो जक्ष कन्या रमण्यो। हमारे पिताजी राजाओं के राजा हैं, मतलब हम अपने पिता के पास जा रहे हैं तो राजाओं के भी राजा हैं, तो धन की तो कोई कमी नहीं। अब धनम अपि निधय, 9 निधियां हमारे अधिकार में रहती है, धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम धन आपसे क्यों मांगे। धन हमारे पास है, जक्ष कन्या रमणीय, और जक्षों की कन्याएं रमणीया हैं वहां, इसलिए आपसे न सुंदरी, हम सुंदरी की कामना नहीं करते। वे हैं इसलिए कामना नहीं करते हैं, यह बात नहीं, वास्तव में इनके मन में ही इच्छा नहीं है, न धन की न स्त्री की, न धनम न जनम न सुंदरी। तो वो तो हमारे लिए मांगना भी बेकार है, क्योंकि पहले से ही वे सब सुलभ। पिताजी कुबेर हैं, 9 निधियां धन हैं, और जक्षों की रमणियां, जक्षों की कन्याएं हमारे लिए रमणियां हैं। रूपम कामाभिरूपम, रूप आपने ऐसा दिया है कि कामदेव भी इच्छा करेगा हमारे रूप की। बपुर अपि तरुणम, शरीर भी पूर्ण जवान दिया है। पुष्पकम यान मस्ति, और जहाँ तक यान वायुवान का प्रश्न है तो पुष्पक ही है। पुरेशा चालका अपि, और पूर्ण नगर तो चालका है, अलका। तो हे प्रभुवर, भवतो दर्शना दस्ति मोक्ष, जहाँ तक अगर मुक्ति मांगने की बात हो तो आपके दर्शन से ही मुक्ति हो गई, मुक्त भी हो गए, मुक्त हो गए, वो सब कुछ भरा पड़ा है। तो बस तम नान्यत प्रार्थनीयम किमपि दिशा तवास विस्मृतिम कृष्ण नामना। बस एक ही बात मांग रहे हैं कि अपने कृष्ण नाम की अविस्मृति हमें दीजिए, आपका नाम हमेशा याद रहे और हमेशा गुणगान करते रहे, आपकी भक्ति करते रहे, कहीं भी रहे, हमको यही कृपा कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ हमारे पास है। यह एक कहने की शैली है कि हमारे पास और सब कुछ है, बस एक ही दीजिए, कृष्ण नाम की विस्मृति न हो। और भी देखिए, इस वरदान में सबसे पहले गुणानुवर्णने जिह्वा सतो वाणी गुणानुकथन, सबसे पहले यह वरदान क्यों मांग रहे हैं कि मेरी वाणी आपके गुणों के वर्णन में रहे। हरीश्वर जी कहते हैं, मैं पूरा संस्कृत पढ़कर के नहीं पढ़ रहा हूँ, भाव कह रहा हूँ। नलकुबर और मणिगिरी देख रहे हैं कि जब भगवान गुण से युक्त हुए तब हमारा उद्धार हुआ। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है, रस्सी से जब बंधे तब हमारा उद्धार किए। तो उस पर दृष्टि करके कह रहे हैं कि हमारी वाणी आपके गुण वर्णन में लगी रहे, गुण का अर्थ दया यश और भी ऐश्वर्य, लेकिन गुण को देख करके कह रहे हैं। तो यह नियम है कि जिस व्यक्ति का काम जिस वस्तु से बनता है सबसे पहले प्रधानता उसी को देता है। तो गुण वर्णन की प्रधानता इसमें है, पहले मांग रहे हैं जिहवा गुण वर्णन में लगी रहे क्योंकि गुण से इनका उद्धार हुआ था। और ऐसे जगह भगवान भेज रहे हैं जहां फिर श्रीमद हो सकता है, श्रीमद होने का फिर डर है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी आंखें सदा संतों के दर्शन में लगी रहे, जैसे पहले स्त्रियों के दर्शन में लगी थी हमारी दृष्टि, अब न लगे। सताम दर्शने दृष्टि ही अस्तु, संतों के भक्तों के साधुओं के दर्शन में दृष्टि लगे। इस संसार में स्त्रियों के दर्शन में स्वाभाविक सबकी दृष्टि लगी रहती, फोटो रखना घर में, आजकल तो कहीं भी सैलून की दुकान भी है तो उसमें अभिनेत्रियों का चित्र टंगा हुआ है, वो केस कटा रहे हैं सैलून में तो उधर दृष्टि ही स्त्री के दर्शन में लगी। इस तरह से जीवन व्यर्थ जा रहा है, कहीं दृष्टि ही साधुओं के दर्शन में लगी रहनी चाहिए जिनके हृदय में भगवान है। तो इनको खतरा है, मांग रहे हैं फिर हम जा रहे हैं वहां भी जक्ष रमणियां हैं, फिर वही दशा आएगी, लेकिन इसीलिए हमारी दृष्टि साधुओं के दर्शन में लगी रहे। भगवान वरदान दो हृदय में भी परमात्मा रूप से है, ऐसा करें कि हमेशा केवल साधुओं के दर्शन में दृष्टि लगी रहे। भगवत तनुना जो आपके शरीर माने गए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी दृष्टि आपके रूप में भक्तों के दर्शन में लगी रहे, इसीलिए मांग रहे हैं। कहते हैं हे प्रभु, और आपकी जो भी इच्छा हो आप दे या न दे, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, न हमको कोई जरूरत है। जद जद अर्थितम एतेषु वितरत्वम यथा रुचि, आपके बहुत भक्त हैं और बहुत आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी जो रुचि हो या उनके रुचि के अनुसार जो कुछ देना हो दीजिए, लेकिन परमानंद कंदम तु साधु संगम दिशा मिशन, परंतु हमारी यही प्रार्थना है कि परमानंद के घन साधु संग हमें दीजिए, बस साधुओं का संग दीजिए, हमारे जीवन में यही इच्छा है। दृष्टि साधुओं के दर्शन में लगी रहे, इसका अर्थ है कि साधु संग भगवान देंगे तब तो दर्शन होगा। बहुत काल तक तो स्त्रियों का दर्शन किए, ये दर्शन किए, तो किस दुर्गति में रहे, और एक दिन केवल साधु का दर्शन हुआ नारद जी का, बस इतना बड़ा लाभ हो। तो अब हमारी दृष्टि हमेशा साधुओं को देखने में लगी रहे, इसलिए हमें ये चाहते हैं। इस प्रकार जब भगवान से इन्होंने विनय किया तो भगवान हंस रहे थे। इस श्लोक का बहुत देर तक अर्थ करना अच्छा लगता है, लेकिन समय बिल्कुल पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं आगे नहीं पढ़ सकता। भगवान हंस रहे थे, इस पर हंस रहे थे कि बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं मुक्ति देता हूं, लेकिन आज मुक्त पुरुष मुझ बद्ध की स्तुति कर रहे हैं, मेरी भी लीला अजीब है, मैं अपने दंड में अपनी सजा में पड़ा हुआ भोग रहा हूं, अरे प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता है। तो भगवान हंस रहे थे, बाल लीला में ही हंस रहे थे, और हंस करके कहे श्री भगवान वाच, परम सुंदर भगवान बोल रहे हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान शब्द लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ है सुंदर भगवान बोल रहे हैं, उखल में बंधे हुए भगवान आज बोल रहे हैं। कहते हैं ज्ञातम मम पुरैवे तद ऋषिणा करुणात्मना, बिल्कुल तोतली बोली नहीं बोल रहे थे, मेघनाथ गंभीर बोली में नहीं बोल रहे हैं, तोतली बोली में बोले कि पहले से ही हमको पता था ये सब, तो पहले से पता था आपको ज्ञातम मम पुरैवे तद, पहले से ऐसा पता था कि नारद जी ने आप लोगों को साथ दे दिया है, तो साथ नहीं था वास्तव में, नारद जी की कृपा थी, ये मुझे मालूम था, ज्ञात था। जब श्री मदान भयोर वाग्भी विभ्रंसो अनुग्रह कर, वो साधु की वो ऋषि की कृपा थी वास्तव आप लोगों पर, ये मुझे पहले से पता था। भगवान इस तरह बोल रहे हैं कि बच्चे ये समझे कि ये भी कोई बच्चा जैसा ही बात कर रहा है, मुझे सब पहले से पता था। कब से पहले से पता था? अभी तो जन्म लिए 3 वर्ष हुआ और बीच में कौन इनको बताया था कि पहले से पता था? यही तो भगवत्ता है भगवान की। अर्जुन भी पूछ दिए भगवान से, क्या आप पहले भी जन्म लिए थे? जो सूर्य को उपदेश दिए थे तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवाचार्य। तो वहां तो खैर वास्तव में ईश्वर के रूप में बोल रहे थे गीता, लेकिन यहाँ बिल्कुल बच्चा के रूप में ही बोल रहे थे। सब मुझे पता था, नारद जी ने साप दिया, और साप नहीं था आप लोगों पर, उनकी कृपा थी। और फिर भगवान कहते हैं साधु नाम समचिता नाम सुतरा मत कृतात्म नाम दर्शना न भवेद बंध पुष्णो अक्षण सवितुर्जत। मेरे साधु समदर्शी होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, उनका चित्त मुझमें लगा होता है। तो मेरे भक्तों का दर्शन करने पर वैसे ही अज्ञान नहीं रह जाता है, बंधन नहीं रह जाता है, जैसे सूरज का दर्शन करने पर आंखों का बंधन नहीं रहता है। आंख का बंधन है न दिखाई पड़ना, अंधकार छा जाता है तो आंखें एक प्रकार से बंद हो जाती हैं, नहीं देख पाती हैं, लेकिन सूरज के उगते ही लगता है आंखें खुल गई और दिखाई पड़ने लगती। तो मेरे भक्तों का दर्शन करने पर बंधन नहीं रहता है, अज्ञान नहीं रह जाता। भगवान ने कितने सुशील व्यक्ति हैं, कभी भी यह नहीं कह रहे हैं कि मैंने कृपा करके आपका उद्धार कर दिया है। तो मेरे भक्त की कृपा से आपका उद्धार हुआ है। और एक सिद्धांत बता रहे हैं कि इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति मेरे भक्त का साधु का दर्शन करता है, श्रवण करता है, तो उसके जीवन में अज्ञान नहीं रह सकता, कर्म बंधन नहीं रह सकता, जैसे सूरज के उगने पर आंखों का बंधन नहीं रहता, देखने की शक्ति आ जाती है। तद गच्छतम मत परमल नलकूबर साधनम। आप दोनों मेरे भक्त हैं, आप लोग साधनम जाइए, नलकूबर एक का नाम ले रहे हैं, उसे दोनों को समझ लेना चाहिए। हे नलकूबर आप दोनों जाइए, मणिग्रह नहीं कहा लेकिन उसमें समझ लेना चाहिए कि हे नलकूबर आप दोनों अपने घर जाइए। साधनम अब आप मेरे भक्त हो गए, मुझमें आपका प्रेम हो गया। संजातो मई भावामीप्सित परमो भव, मई मुझमें आप दोनों का परम भाव संजात, मुझमें परम प्रेम उत्पन्न हो चुका है। मुझमें मतलब अपने स्वरूप को दिखाकर कह रहे हैं, जो मैं उखल में बंधा हुआ हूँ, तो भगवान दिखाकर कह रहे हैं कि मुझमें आपका परम भाव हो गया है। कुबेरात्म जो बद्ध मूर्त व जदवत थोड़ा मोचित भक्ति भाजव कृत भक्ति भाजव कृत। भगवान कह रहे हैं कि मुझमें आपका परम भाव हो गया है। बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये कह रहा है कि आप लोग हमसे प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक ही है, वो स्वाभाविक समझ रहे हैं। परम भाव हो गया है, कैसा भाव? अभव, जिस भाव के आने पर फिर भाव नहीं होता है, फिर जीव जन्म मरण में नहीं पड़ता है, ऐसा परम प्रेम वामन आप दोनों का हो गया है मुझमें, जिसकी आप लोग कामना कर रहे हैं। ईप्सिता बहुत काल से नारद जी के दर्शन से ही अब तक जिस प्रेम की आप लोग कामना कर रहे थे, चाह रहे थे, वह परम प्रेम आप लोगों को प्राप्त हो गया है मेरी कृपा से या नारद जी की कृपा से। आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। वो जाना चाहते नहीं थे, लेकिन भगवान ने कहा कि परम पुरुषार्थ जो है मेरे चरणों में प्रेम, वो आप लोगों में सम जाता, सम्यक जन्म ले चुका है, आप जाइए कोई बात नहीं। भगवान भेज रहे हैं अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो इतना सुन करके वे प्रणाम करने लगे बारंबार। श्री सुकौवाच इतुक्त तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्ध लोखल मंत्र जगमतुर्दिशमुत्तरान। हरिश्वरी जी कहते हैं कि वे प्रणाम करने लगे तो उखल को भी प्रणाम कर रहे हैं, रस्सी को भी प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने, दामने उस रस्सी को प्रणाम है। दामोदराष्टक में कहा गया जिसमें कृष्ण बंधे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा जब भगवान ने कहा तो उन दोनों ने भगवान की परिक्रमा किया, पता नहीं पूरा वृक्ष के बाहर बाहर किया कि केवल कृष्ण का किया, जो भी हो परिक्रमा किए और प्रणाम में चब पुनः पुनः बारंबार प्रणाम किए। प्रणाम करके चलते थे, फिर परिक्रमा करके प्रणाम करते थे, फिर प्रणाम करते थे। बद्ध उलू खलम आमंत्र, बद्धोल उखल को प्रणाम कर रहे थे, जो उखल में बंधे थे भगवान उनको, अथवा उखल को और उखल में बंधे हुए दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। उखल को ही प्रणाम कर रहे थे कि आपने हमारा उद्धार किया। वास्तव में उखल भी चिन्मय है ब्रज का, जिस उखल में भगवान बंधे थे उसको बार बार प्रणाम कर रहे थे कि आपने हमारा उद्धार किया। रस्सी को प्रणाम कर रहे थे, भगवान को प्रणाम कर रहे थे, और वहां पर बैठे हुए बच्चों को प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करने में तृप्ति नहीं हो रही थी, प्रणाम करके तब जगमतुर दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वे आकाश से नहीं गए, थोड़े देर तक और ब्रज में ही चलते चलते उधर जाकर गांव से बाहर तो हवाई जहाज की तरह चले गए करके आकाश मार्ग से। लेकिन शुरू में वे गए जमीन पर ही, उत्तर दिशा की ओर निकल गए। इस प्रकार से जमलार्जुन का उद्धार भगवान ने किया, और अभी वे बंधे बंधे ही रह गए। यह उनकी लीला थी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच, इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लोखलमामन्त्र्य जगमतुर्दिशमुत्तराम। भगवान को उखल में बंधे छोड़ करके ही नलकुबर और मणिग्रीव चले गए। वे समझ गए कि भगवान उखल में बंधना पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। और वास्तव में केवल भगवान को ही नहीं, उनके भक्तों को भी अच्छा लगता है कि उखल में बंधे रहे। तो इसलिए हम अभी इनको खोलने की लीला नहीं कह रहे हैं, आज ही खुलवा दिया जाएगा, लेकिन अंत में कहेंगे। जब कृष्ण उखल में बंधे थे तो उस समय उनकी क्या दशा हो रही थी। माँ यशोदा अपने घर के काम धंधा में लग गई थी, कुछ छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के पास थे, और गोपियां भी अपने काम धंधे में चली गई थी। माँ यशोदा ने डांट कर सबको भगा दिया था कि यहाँ भीड़ मत लगाओ, जाओ, तुम ही लोगों ने हमारे लड़के को बिगाड़ा है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो किसी पर भी दोषारोपण करता है। तो श्री गोपी जन चली गई, पर बच्चों को कह दिया माँ यशोदा ने, देखते रहना यहाँ रहने। बच्चे थे, बाकी श्री बलराम जी कहीं और जगह थे। तो किसी गोपी ने जाकर बलराम जी से कहा कि तुम्हारे छोटे भैया को यशोदा सवेरे से ही बांध कर रखी है। इतना सुनते ही श्री बलराम जी दौड़े हुए आए, बांध कर रखा है। श्री बलराम जी का भगवान कृष्ण में वात्सल्य भाव है, क्योंकि वे गुरु हैं, बड़े भाई हैं। यही स्नेह करने के लिए, इस तरह से कृष्ण की रक्षा करने के लिए ही वे बड़े भाई बने हुए। यह सुनते हैं कि कृष्ण को बांधा गया है, श्री बलराम जी को अपने स्वरूप की याद आ रही है कि मैं शंकरसन हूँ और वे तो परम पुरुष स्वयं भगवान हैं। उनको इस तरह से बांधा है तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, और देखता हूँ, चलता हूँ। लेकिन गोपी ने कह दिया कि यशोदा ने बांधा है। फिर भी श्री बलराम जी आए। उसके पहले की लीला है, कृष्ण किस तरह रो रहे हैं, बंधे बंधे सिसक रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी सिसकने लगते थे, आंसू उमड़ जाते थे। एक गीत में श्री लसूरदास जी ने लिखा है, गाया है, कुआर जल लोचन भरी भरी ले तकुआर जल, लोचन भरी भरी ले कुमार मतलब कृष्ण कुमार, आंख में लोचन में आंसू भर भर लेते हैं, बीच बीच में सिसकने लगते हैं। क्यों रो रहे हैं? इस दंड से नहीं, बारंबार उनको याद आ रहा है कि जो माँ मुझसे इतना स्नेह करती थी आज क्या हो गया उसको। तो माँ के पूर्व स्नेह की याद करके और आज के कठोर व्यवहार की याद करके बारंबार अफसोस हो रहा है और रो रहे हैं। कुंवर जल लोचन भरी भरी ले, कृष्ण बारंबार रोते हैं, फफकते हैं और आंखों में आंसू उमड़ जाते हैं। बालक बदन बिलो की जसोदा, जतरी सकरती अचेत कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। कोई गोपी कह रही कि देखो जसोदा, एक बार अपने पुत्र के मुख को देखो, क्या दशा है बेचारे की, एक बार देखो। छोरी उदरते दुसह दावरी, डारी कठिन कर बेत कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। छोरी उदरते दुसह दावरी, ये जो तुम रस्सी बांध रही हो, बांधी हो, इसको खोल दो और हाथ से बेत रख दो, नहीं तो तुम्हारे पुत्र को कुछ हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा, इतना डर गया है, इतना रो रहा है। ये खोल दो रस्सी और बेत को रख दो नीचे। छोरी उदरते दुसह दावरी, डारी कठिन कर बेत दही धोरी, तो ही क्यों दरिया डरियावे, शिशु पर तामसेत कुंवर जल लोचन भरी भरी ले कुंवर जल। ओह पता नहीं तुम्हारे हृदय में इतनी कठोरता कैसे आ गई। कही धोरी तो ही क्यों करियावे शिशु पर तामसेत, एक शिशु पर, बच्चे पर इतना क्रोध हो रहा है, इतना तामस हो रहा है तुम्हारे भीतर। मुख आंसू अरुमा खन खन का, मुख पर आंसू फैला हुआ है, आंसू की बूंदे, और बेचारा माखन खाया था जो बानर को लूट छीटे थे, तो खाए भी थे, तो मुंह भगवान नहीं पहुंच पाए हैं, अभी माखन भी लगा हुआ है एक दो जगह मुख में और आंसू की बूंदे हैं। मुख आंसू अरुमा खन खन का, निरखी नयन छवि दे तकुआर जल लोचन भरी भरी ले। माखन का जो कण है मुख पर लगा हुआ, तो जहां भी लगा होगा इधर, तो उसको सूरदास जी कहते हैं उस गोपी के भाव में कि वह चंद्रमा जैसा दिख रहा है और आंसू के जो छोटे छोटे कण हैं वे तारे जैसे जगमग कर रहे हैं, और श्रीकृष्ण का सांवला सब मुख है नीले आकाश की तरह लग रहा है। पूछ नहीं पाए हैं माखन और आंसू भी नहीं पूछ पा रहे हैं। मुख आंसू अरुमा खन कनिका, निरखी नयन छवि दे मानो स्रवत सुधा निधि मोती, उडुगन अवली समेत कुंवर जल लोचन भरी भरी लेत, कुंवर जल लोचन भरी भरी लेत। ना जानो कि पुण्य प्रगट भय, यही ब्रज नंद निकेत तन मन धन न्योछावर की जय, सूर श्याम के हेत कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। पता नहीं जसोदा किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे घर में ऐसा अच्छा लड़का जन्म लिया, अरे इस पर तो तन मन धन सब में उछावर करना चाहिए। थोड़ा सा दही बर्बाद किया, माखन बर्बाद किया, मटका फोड़ा, इससे क्या हो गया? जितनी हानि हुई है हमारे घर से तुम 100 गुना ले लो, लेकिन इसको खोल दो। माँ जसोदा कहती है तुम्हारे घर से मटका ले लूंगी, माखन ले लूंगी, लेकिन जो इसकी आदत बिगड़ रही है वो कैसे बनेगी? धन दिखा रही हो, आया करके रोज रोज उलाहना देती थी, आज अब दया आ रही है। इस तरह से वो माँ जसोदा कहती। तो किसी गोपी ने बलराम जी से कहा कि तुम्हारे भाई को आज बांधा गया है। हलधर सो कही ग्वाल सुनायो, एक ग्वालिन ने सुनाया कि बांधा है, प्रातः ही ते तुम्हारो लघु भाई आज जसुमती उखर बांध लगायो। जसुमती ने बांधा है और वो भी उखल से सटा करके बांधा है। ऐसे बांधा जाता है, तो घर में बांध कर रखी होती अपने पलंग पर चाहे कहीं, तो उखल से सटा कर बांधा है। तो इस तरह से सुनाई तो श्री बलराम जी आए। श्री बलराम जी किस तरह आ रहे हैं और कृष्ण को देख करके उनकी भी क्या दिन दशा होती है वर्णन कर। यह सुन के हलधर तहां आए, यह सुन के हलधर तहां आए। हलधर जी आए सुन करके, देखी श्याम उखल सो बांधे, देखी श्याम उखल सो बांधे, तब ही दो लोचन भरियाए, तब ही दो लोचन भरिया। तो श्री बलराम जी भी रोने लगे, कृष्ण को बंधा हुआ देख करके बलराम जी के आंखों में आंसू भर आए। कृष्ण तो रो ही रहे थे, ये दोनों ईश्वर रो रहे हैं, आज दीन दशा में पहुंच गए हैं, देख करके रोने लगे। रोते हुए कहते हैं, मैं बरजो कई बार कन्हैया, मैं बरजो कई बार कन्हैया, भली करी दो हाथ बंधाए। मैं कई बार तुमको मना किया था ना, इस तरह से चोरी मत करो, इस तरह से नटखटपना मत करो, तो खूब मजा मिल रहा है ना, हाथ बंध गया ना, भली करी दो हाथ बंधाए, आज तो दोनों हाथ बंध गया ना। बार बार मना किया तो रो रो कर कह रहे हैं, अजहू छाड़ोगे लंगराई दो कर जोरी जनन पे आए। अब आज से इस तरह की शैतानी छोड़ोगे ना, अब नहीं चोरी करोगे ना। तो माँ को सुना करके पूछ रहे हैं, कृष्ण कह दे हाँ तो जाकर कहेंगे कि अब वो कह रहा है कि अब नहीं करें, अब नहीं चोरी करोगे ना, अब नटखट काम नहीं करोगे ना। तो कृष्ण तो रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो माँ के पास, जसोदा के पास श्री बलराम जी आए, दोनों हाथ जोर करके आए, बौकर जोर जननी पे आए। तो कोई दूर नहीं थी माता जसोदा, थोड़ी ही दूर पर घर में थी, वो देखती रहती थी इनको। श्याम ही छोरी मोही बांध बरू, निकसत सगुन भले नहीं पाए। आज मैं घर से जा रहा था तो सगुन नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, यहाँ रहा होता तो कृष्ण को इस तरह बंधने नहीं देते। आज घर से अच्छे आदमी का मुख देखकर नहीं निकला गया। तो माँ श्याम को छोड़ दो और मुझे बांध दो, अगर तुम्हारी बांधने की इच्छा है तो इसको छोड़ दो कृष्ण को और हमको बांध लो। मेरे प्राण जीवन धन कान हूँ तिनके भुज मुही बांध दिखा। कृष्ण मेरे प्राण है, जीवन है, और उसकी बांह बंधी हुई तुमने हमको दिखा दिया, क्या मैं कहूँ? माँ मेरी प्रार्थना है मुझे बांध दो, मुझे बांध दे कहने का अर्थ बलराम जी का कि उसको खोल दो, ये अर्थ था, ऐसा कहेंगे तो खोल देगी। और जब मां नहीं खोली और कही कि तुम जाओ तुम अपना काम करो, तब बलराम जी कहते हैं तुम जानती हो मैं कौन हूँ, इतना कह करके अपने स्वरूप और नाम सुनाने लगे। तो मां यशोदा ने कहा अब दोनों एक ही पंक्ति में हो जाओगे, अभी कहती हूँ जाओ अपना काम करो। तब बलराम जी रोने लगे, फिर माँ के डांटने से रोने लगे और जा करके अपने नील वसन से अपने नीले कपड़े से भगवान के आंसू को पोछने लगे। वो कृष्ण से बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, लगभग एक ही समान, तो आंसू पोछ रहे हैं, भगवान सिसक रहे हैं। और जब बलराम जी ने माँ से कहा कि खोल दो, और माँ ने कह दिया कभी नहीं खोलूंगी और तुम भी जाओ, तो श्री कृष्ण और जोर से रोने लगे। वो एक आशा थी कि भाई आएगा खोलेगा, तो वो भी गज निराशा, वो रोने लगे, इसलिए आंसू उमड़ आया। और तब बलराम जी पोछने लगे आंसू, और आंसू पोछ करके फिर माँ यशोदा से कहते हैं दूसरी बार करुणा पूर्वक, अब जो जोश था उनका स्वरूप दिखाना चाहते थे वो बंद हो गया, वो प्रार्थना करने लगे। काहे को जसोदा मैया बांधो ते बारो कन्हैया, काहे ते जसोदा मैया